अभय तुरंत कबीर के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, अरे यार ये सब क्या है, ये थप्पड़ वाली भाभी तो बोल भी इस तरह से रही हैं जैसे उनकी आवाज़ में भी कोई धारदार हथियार छुपा हुआ हो। कितनी खतरनाक है ना यार उनकी आवाज़। अब जैसे ही अभय ने ये कहा, कबीर हैरानी से झलक को देखने लगा था, लेकिन एक बार फिर उसकी नज़रें अनामिका पर जाकर ठहर गईं, क्योंकि अनामिका उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। फिलहाल तभी अभय मुस्कुराते हुए बोला, घूमने फिरने से याद आया, यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, स्पेशली क्लब। आई नो इस तरह से घर के बड़ों के सामने क्लब वगैरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जहाँ भी जाना चाहिए अपने बड़ों को बताकर ही जाना चाहिए, अभय ने पूरी शराफत से कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी हल्का सा मुस्कुराकर बोले थे, अरे बेटा डोंट वरी, हम आजकल के ज़माने के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम सब समझते हैं, और फिर इस उम्र में आप बच्चे लोग घूमना फिरना नहीं करोगे तो क्या हम करेंगे। अब दादी की बात सुनकर कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फिलहाल अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, हम लोगों ने यहाँ आकर क्लब घूम लिया है, वाकई वो ज़बरदस्त है, और हम आप लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर अभय मुस्कुरा दिया और बोला, रियली थैंक यू सो मच अनामिका जी। तभी अनामिका बोली थी, लेकिन जो जगहें हमने अभी तक नहीं देखी हैं वहाँ पर भी हम सब साथ घूमने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, और यहाँ पर तो इतने सारे एक्टर्स और हीरो हीरोइनों के घर भी मौजूद हैं, तो क्यों ना हम सब साथ जाकर हीरो हीरोइन के साथ डिनर या लंच वगैरह करें। ये सुनते ही कबीर तुरंत मजाकिया अंदाज में बोला, मिस अनामिका आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हीरो हीरोइन आपका ही इंतजार कर रहे हो, और आपको देखकर बोलेंगे कि मिस अनामिका जी आएंगी और हम उनके साथ में कॉफ़ी पियेंगे। फिर कबीर ने हंसते हुए कहा, और हाँ अनामिका जी, आप प्लीज़ जब आप उन हीरो हीरोइन के साथ लंच करेंगी तब आप हमें उनसे ऑटोग्राफ भी ज़रूर दिला देना। कबीर की बकवास सुनकर अनामिका उसे आंख दिखाकर रह गई थी, जबकि झलक हल्का सा मुंह दबाकर हंसने लगी। तभी आदित्य ने गहरी नज़रों से झलक को देखा था और अपनी आंखों के इशारे से पूछा था, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। झलक ने भी बिना कुछ कहे हल्का सा गर्दन हिलाकर हामी भरती थी। अब तो आदित्य का चेहरा एकदम से किसी प्यार वाली फिल्म के हीरो जैसा चमक उठा था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना दादी को डिस्चार्ज करवाकर इस वक्त अपने मेंशन में मौजूद था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं थे। उसी वक्त दादी भी गहरी नज़रों से सिद्धार्थ को देखते हुए बोली थी, बेटा एक बार फिर से सोच ले, ओबेरॉय परिवार पूरी तरीके से समाज में बदनाम हो चुका है, और अगर इस तरीके से हम ओबेरॉय परिवार के साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो लोग हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। क्या तू वाकई आकांक्षा से शादी करना चाहता है, कहीं तू ये फैसला झलक से जुड़ी नाराज़गी के चलते तो नहीं ले रहा। अब ये सुनकर सिद्धार्थ ने केवल हल्की सी गर्दन घुमाकर दादी को देखा और कहा था, आगे से उस लड़की का नाम आप मेरे सामने बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की इतनी ज़्यादा ड्रामाबाज, घटिया, झूठी और चालबाज निकलेगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ और आकांक्षा से ही शादी करूँगा, और जैसे ही खुराना परिवार का नाम ओबेरॉय परिवार के साथ जुड़ जाएगा लोग अपने आप बातें बनाना बंद कर देंगे, फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि खुराना परिवार के खिलाफ कुछ भी बोल सके। तभी रणविजय ने दादी को देखकर कहा था, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है दादी, और वैसे भी झलक सिद्धार्थ को लेकर कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। ये बोलकर रणविजय तुरंत ही अपने कमरे में चला गया और जाकर गुस्से में इधर उधर टहलने लगा था। बार बार अनामिका का उसे चांटा मारना और उसकी कही हुई बातें उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बरसने लगी थी। वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए सोचने लगा था, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अनामिका, तुमने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। इस वक्त रणविजय के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और वो हर हाल में अनामिका से अपने सवालों के जवाब चाहता था। जिस प्लान के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद किए थे उस प्लान को अनामिका ने पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया था। यही वजह थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और तभी उसने ठान लिया कि वो अब जल्द से जल्द अनामिका से मिलेगा। टेढ़े मेढ़े तरीकों और अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उसने इस बात का पता लगा लिया था कि अनामिका आज रात क्लब में पार्टी करने जाने वाली है। वहीं झलक कमरे में मौजूद थी, हालांकि शाम हो चुकी थी। झलक अनामिका को देखकर बोली थी, एक बात तो बताओ, अभी दो दिन पहले ही तो हम क्लब गए थे और आज फिर हम क्लब जा रहे हैं, क्या क्लब के अलावा हमारे पास घूमने के लिए कोई और जगह नहीं है क्या? मुंबई आए हैं, यहाँ का समुंदर भी है, बीच भी है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ फेमस हैं, अब इस तरीके से बार बार उसी सिद्धार्थ खुराना के क्लब में जाना मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही झलक ने ये कहा अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा था, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन आज उस क्लब में कुछ स्पेशल है और हमें वहाँ जाना ही होगा। अब जैसे ही अनामिका ने रहस्यमयी अंदाज में ये कहा तो झलक ने भी उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वो जानती थी कि अनामिका जो भी कदम उठाती है बहुत सोच समझ कर ही उठाती है, इसीलिए उसने भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और फटाफट एक हॉट शॉट ड्रेस पहनकर तैयार हो गई थी। झलक ने एक लॉन्ग ब्लैक स्लिट ड्रेस पहनी थी जो स्लीवलेस थी और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं अनामिका ने भी एक स्टाइलिश फिटेड ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों साफ झलक रहे थे। दोनों जैसे ही तैयार होकर बाहर आए, आदित्य तो झलक को देखकर पलके झपकाना तक भूल चुका था। वहीं दूसरी ओर कबीर का दिल अचानक अनामिका को इस रूप में देखकर जोरों से धड़कने लगा था और वो बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बस अनामिका को ही देखे जा रहा था। तभी अभय ने जल्दी से कबीर को नोटिस किया और उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, ये क्या कर रहा है बे, तेरी लार टपक रही है जो बाहर से भी दिखाई दे रही है, किस तरीके से उसे घूरे जा रहा है। तो जल्दी से अभय फिर बोला, यार वो कबीर भाई कितनी खूबसूरत है ये अनामिका जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसी ही लड़कियों के साथ टाइम पास करते हुए निकल जाएगी, लेकिन अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर अनामिका जी मुझसे इम्प्रेस हो गई तो मैं उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा और शादी कर लूंगा। अब कबीर ने जैसे ही ये बातें सुनी, न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अभय के पास जाकर उसकी कमर में जोर से नोच दिया और अभय तुरंत चिल्ला पड़ा। अभय को इस तरह चिल्लाते देख झलक और अनामिका तुरंत उसके पास आ गई और बोली, क्या हुआ अभय। अभय लाल आंखों से कबीर को देखने लगा, जबकि कबीर अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगा, मानो उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन अभय अपनी कमर मलते हुए बोला, अरे इतनी खूबसूरत लेडी सामने हो तो इंसान देखकर चीखेगा ही ना, अब आप लोग प्लीज चलिए ना, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। मैंने सुना है कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत मजेदार होती है, मैं कई देशों की नाइट लाइफ इंजॉय कर चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ की नाइट लाइफ देखने वाला हूँ, चलिए ना। अब ये बोलकर अभय ने अपना हाथ अनामिका की ओर बढ़ा दिया और अनामिका ने भी बिना कुछ सोचे अपना हाथ उसके हाथों में डाल दिया था। ये देखकर कबीर के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि अनामिका ना तो कबीर से किसी तरह की कोई बात कर रही थी और ना ही उसकी ओर देखना पसंद कर रही थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया।
वहीं आदित्य ने अपना हाथ झलक की ओर बढ़ाया, झलक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपना हाथ सीधे आदित्य के हाथों में रख दिया। अब आदित्य ने भी हल्की मुस्कान के साथ बड़े प्यार से कहा, चले। झलक ने अपनी गर्दन दो बार हिलाई और जल्दी ही वो लोग वहां से निकलने लगे थे। वहीं दूसरी ओर सौरव, स्नेहा, रोहन, आरव और दादाजी थोड़ा सा पर्दे के पीछे छुपकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। उनके जाने के बाद सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, वाकई मानना पड़ेगा क्या प्लान किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर आदित्य और कबीर को बुलाने का प्लान पूरी तरह से दादाजी का ही था। उन्होंने अपने दोस्त को फोन करके साफ साफ कह दिया था कि बच्चे अगर साथ में रहेंगे तो वैसे भी काम धंधा तो जिंदगी भर करते ही रहेंगे, लेकिन अगर ये लोग कुछ दिन साथ बिताएंगे तो अपने प्रोजेक्ट पर भी काम कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजार सकेंगे। उन्हें झलक की सिचुएशन अच्छी तरह से पता थी और इसीलिए वो झलक के दिल की झिझक को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। वो उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां सेट करना चाहते थे, क्योंकि झलक एक बहुत ही कामयाब, मजबूत, ताकतवर और पावरफुल लड़की थी जिसका मुकाबला कोई आसानी से नहीं कर सकता था, और अब वो इस सफर में आदित्य को उसके साथ जोड़ना चाहते थे। हालांकि झलक ने साफ साफ कह दिया था कि उसे अपनी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत नहीं है, लेकिन दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा था, भले ही तुम्हें किसी मर्द की जरूरत ना हो मेरे बच्चे, लेकिन हम भी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं और इस बात का हमें पूरा हक है। झलक ने भले ही परिवार के जोर देने पर आदित्य को हाँ कहा था, लेकिन आदित्य वाकई एक जेंटलमैन इंसान था, इसीलिए झलक भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके साथ चली गई थी। फिलहाल स्नेहा जी की आंखें भर आई थीं, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो बोली थीं, बस मेरी बच्ची हमेशा इसी तरह खुश रहे और उसकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। ये बोलकर वो भावुक होकर दूसरी ओर देखने लगी थीं। फिलहाल खूबसूरत ड्रेस पहने सभी लोग एक ही गाड़ी में सवार होकर क्लब की ओर निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रणविजय, जो गुस्से से पूरी तरह जल चुका था, उसे पता चल चुका था कि इस वक्त अनामिका उसी क्लब में आने वाली है। देर न करते हुए वो भी वहां के लिए रवाना हो गया, लेकिन ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ के फोन पर लगातार कुछ मैसेज आने शुरू हो गए थे। आखिर क्या तमाशा होगा क्लब में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।